जया बेटी और किसका हुआ? तीनों का किसी? और वो दोनों? हाँ, आप तुम्हारी मैया का क्या नाम? और उनके दोनों बेटों
और मीना जी का
नातिनी मीना जी का तेजा का आज संस्कार हुआ। किसी का संस्कार, संस्कार मैंने होता है किसी चीज को पवित्र करना,
उसको सुधार देना, उसको अच्छा सा बनाना। इन लोगों ने भवन नाम मंत्र ग्रहण किया। जीवन में इससे बढ़कर के और कोई चीज बड़ी नहीं है। जीवन में वही सौभाग्यवान है जो भगवान का भजन करने के लिए इस संस्कार को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही ये प्रथा चली आ रही, दीक्षा के समय में, हरिनाम ग्रहण के समय में, और भी कामों के समय में, विवाह के समय में, किसी लड़के का जन्म होने पर उसके अन्नप्राशन के समय में ये विष्णु हवन होना चाहिए, विष्णु होम, वैष्णव होम होना चाहिए। इसलिए वैष्णव होम आज संस्कार करा गया, कल इन लोगों ने हरिनाम लिया था। एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया, आप लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं, अरे सीधा क्यों नहीं राधे 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 कृष्ण कहते? नहीं तो राधा श्याम कर लेते, हरे कृष्ण करने की जरूरत बहुत दूर से उसको हम करते हैं। जब मैं मठ में आया तो हमको भी ये जब नाम प्राप्त हुआ तो हमको संदेह हुआ कि राधा कृष्ण कहने से, डायरेक्ट करने से राधा कृष्ण का बोध होता है, और हरे कृष्ण में तो राधा जी है नहीं, और कृष्ण के यदि डायरेक्ट नाम लिया जाए राधा कृष्ण तो मन उल्लसित होता है। साधारण रूप में हम समझते हैं कि यह राधा कृष्ण का साथ, किंतु हरे कृष्ण में ये चीज नहीं होता है। पीछे से पता लगा जी चैतन्य महाप्रभु जी ने क्यों किया इस नाम को, वेदों में क्यों लिखा गया, कई संतान उपनिषद में इसका ये मंत्र का उल्लेख है। इट इज रिटन इन कलि संतरण उपनिषद, इट हैज बीन टेकन, चैतन्य महाप्रभु इज नॉट फर्स्ट पर्सन टू टेल इट, ही वाज नॉट इंट्रोड्यूसर बट ही टूक इट फ्रॉम वेदास उपनिषद। तो व्हाई इट हैज बीन टॉल्ड लाइक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, व्हाई इट हैज बीन टॉल्ड? तब गुरु जी ने हमको हिंट दिया, ये देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वे राधा जी के अंग की कांति और उनके भीतर की वासनाओं को, भावनाओं को लेकर के पकड़ते, प्रेम की भावना जिसको ये कहते हैं महाभाव कहते हैं, उसको लेकर के आए थे। हरे कृष्ण नाम में जो हरे कृष्ण कृष्ण, इसमें प्रेम की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल कृष्ण नाम में नहीं है, है? जैसे हरे कृष्ण के भी चित्त को अपने माधुर्य से, अपने सौंदर्य से, अपने मधुर सेवा से कृष्ण के चित्त को भी हरण करने लेने वाली हैं राधा जी, इसलिए उनका नाम केवल कृष्ण कहने से क्या होगा, उसमें यह भाव नहीं आएगा, या राधा कृष्ण कहने से भी यह भावना नहीं आएगी। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने इसके 16 प्रकार की, 16 नाम है ना, हरे कृष्ण 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 16 नाम है और 32 अक्षर हैं। हमारे गोस्वामियों ने, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने, और एक हैं पुरी के गोपाल गुरु, नाम सुना है गोपाल गुरु का, हमारे संप्रदाय के आदि गुरु, महाप्रभु की सेवा करते थे। एक समय महाप्रभु जी गए बाथरूम की तरफ में, जंगल में ये लोटे में पानी लेकर के जा रहे थे, तो महाप्रभु जी ने अपनी जीभ को पकड़ करके खूब जोर से पकड़ दिया और चले गए शौच के लिए। तो जब लौट करके आए तो गोपाल गुरु जी, उसमें बालक था 8-10 वर्ष का,
उसने पूछा, प्रभु जी हमारी समझ में नहीं आता जी आपने जीव को क्यों पकड़ करके रखा है बाहर करके, ये मेरी बात नहीं मानती। महाप्रभु जी ने कहा ये सब समय निरंतर कृष्ण 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 हरे कृष्ण करती है, इसको पकड़ नहीं से ये बोलती रहेगी, इसलिए अभी शौचालय में जो गया उस अवस्था में नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं जीव को पकड़ रखा। ये मानती नहीं मेरी बात, उदंड हो गई है, हमारा आदेश नहीं पालन कर, इसलिए इसको जोर से पकड़ करके रखा है। तो उन्होंने कहा जी प्रभु जी ये बात तो ठीक है आपने पकड़ कर करा, और उसी समय टट्टी करते समय जिसी का प्राण निकल गया तो वो अंत में क्या करेगा, वो भगवान का नाम करेगा कि नहीं? तो उसकी गति कैसे होगी, उस तमस को नाम करना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने जब उसको फिर ठोका, तुम छोटा सा लड़का है किन्तु तुम गुरु है, तुम जगत में गुरु का काम करेगा, ये तो हमने इसलिए किया जो देखे तुम क्या करता है। तो तुमने ठीक कहा है, मरते समय में खूब हरे कृष्ण करते थे, प्राण यदि निकल जाए मरते समय जब हमारी जीवा में हमारे मुख में गोविंद जी का नाम हो और उन्हीं का रूप हमारे आंखों में झलमल कर रहा हो और वृंदावन का धाम हो तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। इसलिए पीछे से उनको गुरु नाम से गोपाल गुरु कहा था। तो ये महाप्रभु जी ये इन लोगों ने बहुत से इसके अर्थ बतलाए, किस चीज का, एक एक नाम का, एक एक अक्षर का, और उसमें हरिहर का मन कृष्ण के चित्त को हरण करके कुंजों में ले जाती है कृष्ण को, इसलिए इनका नाम हरा है। बतलाओ तो ये कृष्ण नाम में ऐसा या राधा नाम में ऐसा अर्थ नहीं होता, जो कृष्ण के भी चित्त को हरण कर आकर्षण कर कुंज में हरण करती है, हर हरति मनः कृष्ण के मन को हरण करती है, उस राधा जी का नाम हरा है। इसलिए हरा शब्द में बहुत से अर्थ होंगे, कृष्ण के चित्त को हरण करती है, उनके सर्वस्व को हरण कर लेती है, इसलिए हरा शब्द का यहाँ पर प्रयोग हरे के रूप में है, इसलिए हरे कृष्ण आया। अर्थात कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली उनकी जो परमानंद दायिनी जो राधा जी महाभाव स्वरूपा जो शक्ति है उनके साथ में ना, यदि कोई कृष्ण का अकेले नाम करेगा उसको परमार्थ की प्राप्ति उच्च नहीं मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ भी मिल जाएगा, वृंदावन में कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी। ये परमानंद कौन है, राधा जी के साथ में रहने वाले ये कृष्ण ही है, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से राम शब्द का अर्थ, ह का अर्थ, हरे रे का अर्थ, ये सब बतलाया है। कुछ लोग हरे राम से करते हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं, साधारण लोगों के लिए ठीक है, चाहे लड्डू इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ उन लोगों के लिए तो ठीक है, किंतु जो संप्रदाय में आकर के दीक्षा लिए हैं महाप्रभु के संप्रदाय उनमें हरे कृष्ण से ही आरंभ करके चलना है। इसमें कृष्ण प्रेम, ब्रज का प्रेम, गोपियों के अनुगत्य में कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त होता है। तब मैंने समझा जो जब उनकी व्याख्याएं देखी जीव गोस्वामी की अग्नि पुराण से व्याख्या की है और रघुनाथ दास गोस्वामी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरिनाम चिंतामणि एक छोटी सी पुस्तक है उसका भी मैं प्रकाशन करने वाला हूँ हिंदी में, उसमें ये सब की विधिवत सब व्याख्याएं दी जो आदमी नहीं जानते हैं और बिना जाने हुए प्रेम से भजन नहीं हो सकता, ये सबकी व्याख्या की भी जरूरत है, किंतु धीरे धीरे होगा। अब आप लोग इस संस्कार के द्वारा भगवान की भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, याद रखेंगे मरते समय भगवान का नाम ही स्मरण होना चाहिए, उनकी लीलाएं स्मरण, संसार नहीं उसको भूल जाना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। उस संकीर्तन महाप्रभु जी ने इसलिए प्रचार किया कि हरे कृष्ण कहेंगे तो ये घास पौधे पेड़ जितने भी जानवर जो बोल नहीं पाते वो लोग भी सुनेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाता है, जैसे अभी हवा के माध्यम से ये जो फोन इत्यादि होते हैं या संवाद जो हम लोग इधर से टेलीफोन इत्यादि के द्वारा करते हैं, ये क्या हवा के तरंगों में ये शब्द उड़ करके वहां जाते हैं, उसको कंट्रोल रहता है। आजकल तो आदमियों की ये छवि भी ये सब उसी के माध्यम से जा रहे हैं तरंगों में,
तो जो कुछ हम शब्द बोलते हैं हवा के तरंगों में मिल जाते हैं और पृथ्वी के ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर चले जाते हैं। आजकल संसार में अभी आज हम लोग टहलने गए तो वो क्या मदिरा या क्या पान करके और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गुप्ता कर रहे हैं, बड़े कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। विशेष करके राजनीतिक पार्टियां जगत में शब्दों का प्रदूषण करते हैं, माने क्या गंदे गंदे शब्द इत्यादि का उच्चारण करते हैं। सारा विश्व ब्रह्मांड आजकल इसीलिए भर गया है। इसका सुधार कैसे होगा? कैसे? जैसे वायु में प्रदूषण फैलने पर घी जलाकर उसके परमाणुओं से हवा शुद्ध हो जाती है, वातावरण खूब सुंदर हो जाता है, वर्षा होती है समय पर ये यज्ञ के द्वारा। ऐसे ही हरि नाम के द्वारा विश्व में सर्वत्र ये शब्दों की तरंगों में ये आवाज निकल करके, शब्द ब्रह्म निकल करके विश्व के गंदेपन को दूर कर देते हैं। आराशमय यहाँ हम बोलेंगे हरे कृष्ण, किंतु इसकी आवाज कहाँ जाएगी? ब्रह्मांड में सब जगह फैल जाएगी तरंगों में, और सर्वत्र ही वो वातावरण शुद्ध होकर के जो गंदी गंदी बातों का विष है वो हट जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा जोर से उच्चारण करना, मन ही मन में छिपा करके करने की जरूरत नहीं है। चोरी, बदमाशी, बेईमानी, व्यभिचार ये सब छिप करके कर सकते हो, किंतु हरिनाम में छिपने की क्या जरूरत है? इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें लजाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब संकीर्तन में और भक्ति में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, बहुत दृढ़ता के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कठिनाई आए, जैसे हरिदास ठाकुर को हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज जी को हुआ, जैसे मीराबाई को हुआ, जैसे भक्तों को कभी कभी कठिनाई आती है, किंतु यदि अपने इस हर संकीर्तन में, महाप्रभु की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में ठीक रहेंगे दृढ़, तो विपत्तियां बादलों की तरफ में छट जाएंगी। साइक्लोन आ रहा था, फिजी को गड़बड़ कर देता, किंतु भगवान ने उसको किनारे से मोड़ दिया और वो थोड़ा सा टच कर और दूसरी तरफ में निकल गया। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों को कष्ट न हो, इसलिए उड़ करके वो चला। ऐसी ही विपत्तियां भक्तों पर आती है किंतु उसका बिगाड़ नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग दृढ़ता से आज हमारे रहते पर खूब उत्साह से कर रहे हैं, और हम चले जाएं के बाद में कोई उत्साह नहीं और छोड़ दिया ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज की तरफ, हरिदास ठाकुर की तरफ में बड़े दृढ़ता के साथ में हरिनाम करेंगे, उनमें विश्वास रखेंगे। कृष्ण और राम से भी राम और कृष्ण राधा जी का नाम अधिक दयालु है, इसको ठीक रखेंगे, तब तो आप में ये दृढ़ता रहेगी। इस तरह से दृढ़ रह करके भगवान का भजन कीजिए, दूसरों को भी भलाई कीजिए, उसकी वृत्ति को मोड़ दीजिए भगवान की तरफ। इसके समान विश्व में कोई उपकार नहीं है, इसलिए प्रचार। इसलिए स्वामी जी इतना कष्ट करके देश विदेश में बूढ़े होने पर भी आए। चैतन्य महाप्रभु पैदल पैदल सारे भारत में घूमे, हमको भी इस बूढ़ी स्थिति में क्या सुझा था जब मैं यहाँ आया, किस लिए आया? नहीं, हमारे पुरखों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसा किया, इसलिए आया। जैसे भगवान प्रसन्न रहेंगे उनकी भक्ति होगी, लोग भी भक्ति में। अभी अभी इसका जो बाकी कार्य है ये अभी सर नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी जी करेंगे, इसके बाद में ठाकुर जी को भोग लगेगा, आप सभी लोग प्रसाद पा करके तब फिर लौटेंगे, और शाम को वहाँ पर हरि कथा में आएंगे। आज अंतिम दिन यहाँ का है, कुछ कृष्ण की बड़ी सुंदर मधुर ब्रज की लीलाओं में से कुछ बतलाऊंगा आज। आप लोग, हम समझते हैं कि अभी तक वो सब लीलाएं नहीं सुने हैं। ब्रह्मा जी का मोह क्यों हुआ, इसके सब कारण हैं, उसमें गोप गोपियों का भी कारण है, ये सबको हम बतलाएंगे। गौ प्रेमानंदे वासियों में भी सबसे अधिक जसोदा मैया के लाला के रूप में, और इससे भी बढ़कर के उन्नत यदि ब्रजंगनाओं के प्रियतम हूँ, और इससे भी अधिक श्रीमती राधिका की सेवा करते हुए कृष्ण का वर्णन किया जाए तो इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाए, झट प्रसन्न हो जाए। ये जो कीर्तन अभी जो गाया ये राधिका जी के लिए बहुत प्रिय है, सुन करके अपने प्राण प्रियतम को भी दे देंगे। उनके चरणों में भक्ति दे देती है प्रिया जी। और कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? राधा जी का गुणगान हो तब अच्छा लगता है, अपना गुणगान अच्छा नहीं लगता। ये राधा जी को बहुत प्रिय है, और कृष्ण को प्रिय होने चाहिए। क्या होगा, राधा जी का कोई गान गुणगान करे तो अपनी प्रिया जी की भक्ति दे देते, इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है, किसी को नहीं देते। ये गौड़ीय वैष्णव का विचार है। इसलिए अब हम कृष्ण के राधा जी के कृष्ण के कानों में प्रिय लगने वाले अब राधा जी का स्तोत्र हम लोग बोल रहे हैं। राधा जी के लिए कंक्लूजन करते हुए अंत में कहते हैं, मखेश्वरी मख मनी यज्ञ, ये यज्ञेश्वरी जो है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी, क्रिया की जो शक्ति देने वाली है क्रियेश्वरी, और मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी देवताओं की ईश्वरी, ब्रह्मा के जी जो सरस्वती हैं इनकी भी ईश्वरी, जितनी भी शक्तियां हैं समस्त शक्तियों को भी वरदान देने वाली है राधिका जी। और कैसी हैं, ब्रजेश्वरी, वृंदावन की ये ब्रजेश्वरी हैं, यूं तो यशोदा जी को कहते हैं किंतु यहाँ पर व्यापक रूप में लिया गया है, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते, सबकी ईश्वरी हैं, यहाँ तक कि कृष्ण के हृदय की भी ईश्वरी ये राधिका जी, यही पराशक्ति हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, यही कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने एक अंश से यशोदा जी बन जाती हैं, यही अपने एक अंश से रुक्मणी और सत्यभामा इत्यादि बन जाती हैं, यही अपने एक अंश से नारायणी अर्थात लक्ष्मी बन जाती हैं, यही भगवान के अवतारों की ये जो सीता जी हैं ये अलग नहीं है, उन्हीं का एक प्रकाश है। इसलिए विश्व में जितने भी देवियों को देखते हैं इसकी मूल रूट जो है श्रीमती राधिका है, ये कृष्ण से अभिन्न रहती है, अभिन्न रह करके भी लीला के लिए दो रूपों में कृष्ण ही बटे हुए हैं, कृष्ण का बायां भाग राधिका जी है और दाहिना भाग स्वयं कृष्ण है। इस चीज को समझना चाहिए हम लोगों के लिए, विशेष करके जो भजन करने वाले साधारण लोगों के लिए नहीं, विशेष करके हम लोगों के लिए एक चीज याद रखना चाहिए, यदि गौड़ीय वैष्णव है एक चीज खूब याद रखनी चाहिए और वैसे भजन की निष्ठा, एक गन्ना है ना, गन्ने को रस पीस लीजिए निकाल लीजिए तो वो रस हो गया, रस को आग पर उबाल लीजिए उसका मैल बैठ जाएगा तो वो गुड़ बन जाएगा, गुड़ को और साफ कर दीजिए मशीनों में, पहले हमारे यहां ऐसे ही साफ होता था शिवार और क्या क्या चीजें देकर पवित्र होता था, तो उसको कहते थे खांड, लाल था वो चिमेद है ना, रिफाइंड हो गई, तो रिफाइंड हो जाने पर वो बन गई चीनी, चीनी को और रिफाइंड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, मिश्री, उसमें भी कुछ अभी और रिफाइंड कर दो तो उसका नाम हो जाए शीतोत्पल, एकदम रिफाइंड। किंतु ये शीतोत्पल से लेकर के गुड़ से लेकर के ये सब चीजें हैं क्या, गन्ने का रस ही तो है या किसी चीज से वो बना भी रस ही है, अलग नहीं। इसलिए प्राणी मात्र विश्व का चाहे माने और न माने सनातन जो पुरुष हैं कृष्ण, उन्हीं के ये अंश हैं, और इसी नाते सभी लोग जितने जीव जंतु वृक्ष लता जहां उसमें प्राणी हैं वो सभी उस परमेश्वर के अंश हैं, इसलिए वे प्रभु के सेवक हैं। यदि मैं प्रभु का सेवक हुआ और ये बाप को नहीं मानता है तो अभी उन्हीं का तो बेटा है, ये उसका दुर्भाग्य है जो अपने बाप को नहीं मानता, किंतु है तो हमारा भाई ही, इसलिए उसके प्रति हमारी कुछ ममता रहेगी जो ये भैया सुधर करके पिताजी को मानने लगता, ऐसा तो होना चाहिए। उसी तरह से भगवान क्या है, सनातन वस्तु है। ये सनातन भगवान कौन है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही सनातन ब्रह्म है। गीता में भी ऐसे कहा गया, भागवत में भी कहा गया, वेदों में भी ऐसा, इसलिए ये सनातन के हम अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, तुलसीदास जी कहा हम उसके अविनाशी सनातन अंश हैं, ये कभी ब्रह्म मिलकर के एक नहीं होता, इसलिए सभी ईश्वर के दास हैं, भगवान के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। कोई माने नहीं माने, किंतु हैं तो सभी एक ही प्रभु के दास। जो इस चीज को जानता है वो सबसे प्रीति रखेगा, जो ये हमारा भैया है, हमारा भैया कृष्ण का दास है, समझ रहे हैं, उसके लिए भेद नहीं है किसी में। तब यह है जो ये जरा रिफाइंड होकर के हमारे प्रभु की सेवा करता तो ये ठीक था, किंतु है अपना है। इसलिए सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है, आत्मा के धर्म को, शरीर के धर्म को नहीं। आजकल शरीर के धर्म को ही लोगों ने सनातन मान लिया, तो भी है सनातन ही, किंतु ऊपरी शरीर के धर्म को मान लिया, मन को धर्म को उसने मान लिया। यदि इसको थोड़ा सा रिफाइंड कर दे, गन्ने के रस को थोड़ा सा और रिफाइंड कर दे तो गुड़ तो हो जाएगा, है तो अलग नहीं, इसलिए रिफाइंड उसको करना है। क्या करो भैया, और देवताओं की उपासना करने वाले हैं तो सनातन ही, जितने भी हमारे भारतवर्ष में देवता जी, थोड़ा सा रिफाइंड कर दो, कृष्ण में उनकी चित्त वृत्ति को लगाओ। गीता में कहा भगवान ने, जपन्न देवता यजन्ते सद्भयान्वित ते अपि माम एव कंते वज यजन्ति अविद्वत। जितने देवताओं की उपासना करते हैं, गणेश शंकर इत्यादि, ये सब मेरी ही उपासना है, किन थोड़ा सा अविध पूर्वक है, ना कैसे सीधे नहीं पकड़ करके ऐसे पकड़ रहे, ये विधि। इसलिए देवता देवी भी क्या हैं, ये प्रभु के सेवक दास दासी हैं, ऐसा समझ करके करो तो थोड़ा सा रिफाइंड हो गया। इसलिए ये लोग भी सनातन की गंडी में ही आते हैं, किंतु उसको कर लो वैष्णव, सनातन वैष्णव ये है। सनातन माने नित्य, जो नित्य काल विष्णु को मानने वाले, ये वैष्णव भी चार प्रकार के हैं, किंतु है वही। अब और थोड़ा सा रिफाइंड करते जाओ, अब गुड़ को चीनी बनाओ, अब वो क्या हुआ, सनातन वैष्णव संप्रदाय, जिसकी स्थापना हमारे विश्व वैष्णव राज सभा हुई। आंख बंद करके मत सुनो, नींद आ जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगा, सीधा तन करके बैठो और कान कान के प्याले से इसको पियो। अब ये हुआ चार संप्रदाय, कौन, मध्व, मध्वाचार्य, श्री मध्व, विष्णु और सनक संप्रदाय, चारों वैष्णव हैं, चारों भगवान को मानते हैं, ये सभी भगवान की मूर्ति को मानते हैं, चाहे भगवान का वो कोई भी रूप हो, नृसिंह रूप हो, राम रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो, द्वारकाधीश का हो, या विष्णु का हो, नारायण का हो, ये एक ही तत्व है, किंतु उपासना की कुछ प्रणाली अलग अलग है। इसलिए सनातन धर्म से भी उसको और ऊपर उठ जाओ तो सनातन वैष्णव धर्म हुआ। अब इसको और रिफाइंड करो, इन चारों में से और रिफाइंड करने पर सनातन गौड़ीय वैष्णव ये आया। गौड़ीय वैष्णव क्या, चैतन्य महाप्रभु के विचारों को मानकर उनके अनुसार में राधा कृष्ण की जो विशेष रूप से अनन्य रूप से उपासना करते हैं, ये क्या हुआ, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। थोड़ा सा, एक पेड़ में पांच डालियां हैं, पांच डालियों में हो सकता है कि किसी डाली में छोटा फल लगे, किसी में बड़ा फल लगे, किसी में आम कच्चा भी हो, किसी में पका हुआ बड़ा मधुर है जिसको कोयल ने थोड़ा सा छू दिया, किंतु एक ही पेड़ की तो डाली है। इसलिए सनातन में से बहुत सी डालियों में से एक जो प्रधान डाली है वैष्णव संप्रदाय हुआ, और उस वैष्णव की संप्रदाय में भी शाखा, अब एक डाली में अब शाखा कुछ हुई, अब उस शाखा में क्या हुआ, चार शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से हम लोगों का एक गौड़ीय वैष्णव। अब गौड़ीय वैष्णव वाली शाखा जो है उसमें भी छोटी छोटी पटली टहनियां लगी है, टहनी समझते हैं ना, शाखाओं में भी टहनी लगती है वो, और पतली पतली, जिसमें मंजरी और आम का फल लगता है वो टहनी कहलाती है। ये और रिफाइंड हुआ, राधा कृष्ण की अनन्य भजन प्रणाली जहां है, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में ऐसा कोई भी नहीं है, अलग अलग तो अब शिष्य प्रशिष्य अलग अलग होते जाएंगे, एक बाप है उसके चार बेटे हैं, चार बेटे के अब एक एक के चार चार बेटे हुए, तो वो जो नाती हुए ना, आ रहा है समझ में, वो अपने चाचा जी के बेटों से अपने को एक समझेंगे, ये समझना चाहिए, अलग अलग ना समझे। खाते पीते हैं अलग घर में रहते हैं, तो जहां कोई जरूरत होती है तो ये सभी मिलकर के एक होते हैं, आ रहा है समझ में ना। तो अब उस शाखा में भी जो टहनियां लगी हैं, बहुत सी छोटी छोटी टहनियां, उसमें एक एक में एक एक जो आम लगे हैं, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। इसमें हमारे प्रभुपाद जी को ले लो शाखा, प्रभुपाद माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके सैकड़ों शिष्य हुए जो एकांतिक रूप में राधा कृष्ण की उपासना के साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं, ये स्पेशल हुआ। इन लोगों ने कहीं भी अपना मठ मंदिर किया उसमें गौड़ीय शब्द का प्रयोग जरूर किया, किसी ने रखा गौड़ीय मठ, किसी ने रखा चैतन्य गौड़ीय मठ, किसी ने रखा गौड़ीय वेदांत सिंह, किसने उद्धारण गौड़ीय मठ, किसने देवानंद गौड़ीय मठ, स्थान स्थान पर राधा गोविंद गौड़ीय मठ, किंतु गौड़ीय शब्द का प्रयोग किस लिए, चैतन्य महाप्रभु के हम अनुगत वैष्णव लोग हैं और उनके अनुगत हम सनातन धर्मी हैं, इस चीज को सूचित करने के लिए कि हमारा पेड़ एक ही है, उसमें अलग अलग धड़ हैं, शाखाएं हैं, उसमें टहनियां हैं, उसमें अलग अलग आम हो सकते हैं, किंतु टेस्ट एक ही प्रकार का। टेस्ट बदल जाएगा कब, यदि कुछ कच्चे में उसको चूसो और पके हुए में चूसो, डसना जानते हैं डसा नहीं,
पकने के पहले अवस्था,
पकने के पहले और कच्चे के बाद में, जिसको भक्ति राज्य में भाव कहते हैं, प्रेम पका हुआ फल है और भाव क्या है, बीच वाला है, और कच्चा क्या है, साधन भक्ति। साधन भक्ति भी अब दो प्रकार की, वैधि भक्ति, ये अभी हम विस्तार से नहीं कहेंगे, किंतु अब हम ये कहते हैं कि हम लोग एक फैमिली के हैं, विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं अलग नहीं है। उनको उचित ज्ञान नहीं मिलने से विभिन्न प्रकार के देवताओं देवियों का भजन करते हैं, कोई अपने को बौद्ध मान लिया, कोई ईसाई मान लिया, कोई क्रिश्चियन मान लिया, किंतु रिफाइंड होकर के सनातनी जब होंगे, सनातन धर्म का अर्थात तो आत्मा का धर्म पालन करेंगे, तो करीब करीब एक ही जैसे भाव हो जाएंगे। हम लोगों को इसी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जगत में प्रचार किया इसके लिए किया। शरीर का धर्म अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बाप के हम बेटे हो सकते हैं, किंतु आत्मा तो वही कृष्ण की ही है, इस चीज को समझो। इसलिए इसको सनातन वैष्णव धर्म और फिर उसके बाद में सनातन वैष्णव धर्म में भी गौड़ीय वैष्णव, और उसमें भी हम लोग ले लेते हैं सारस्वत गौड़ीय अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो अनुगत लोग हम लोग, इस तरह से लेकर के चलना चाहिए, अलग अलग नहीं। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रारंभ रूप में एक श्लोक लिखा मन शिक्षा गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजद्व दंड शरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतितराम ए शांतः भ्राता चटुविजयाचेत धृतिपदा। मन को शिक्षा दे करके सारे विश्व को शिक्षा दे रहे हैं। हे मन, तू बड़ा दुष्ट और चंचल है, किसी दूसरे को नहीं कहते, अपने मन को शिक्षा दो। अपना यदि शिक्षा दे करके ठीक होया तो जगत ठीक हो जाएगा। पहले अपने को संभालो, अपने घर को संभालो, पीछे दूसरे में जाओ। इसलिए हे दुष्ट मन, संसार में तुम्हारे जितने प्रकार के दंभ हैं, अहंकार हैं, मिथ्या, क्या मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं धनी हूं, मैं खीजी हूं, मैं ईसाई हूं, ये सारे दंभ, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत भक्त हूं, इसको भी छोड़ो, ये मैं भक्त हूं। भक्त बहुत दीनहीन होगा, जो जितना ही उच्च कोटि का भक्त होगा उतना ही दीनहीन होगा। अरे कल जिसका ठीक नहीं, ये कम भर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, किस लिए दंभ? तुम शरीर तो हो नहीं, ये विद्वता अभी पागल हो जाएगा, विद्वता निकल जाएगी उच्च कुल में, जो जन्मने का जो गौरव तुम्हारा है ये भी समाप्त हो जाएगा मृत्यु के साथ में ही, न जाने फिर गधे घोड़े न जाने क्या हो गए, कोई ठीक नहीं। इसलिए सदा दंभम हित्वा, सब प्रकार के संसारिक जो दंभ और अहंकार हैं छोड़ो, छोड़ करके बड़े नम्र और कोमल बन जाओ। मैं तुम्हारे चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, हे हमारे मित्र मन, हम मन नहीं है, हम है आत्मा, इसलिए मन अभी सब काम कर रहा है, अभी आत्मा सोया हुई है। इसलिए क्या करो, सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतितरा। तुम जिनको मैं बतला रहा हूं खूब अंदर मन से एकांतिक रूप में अनुराग करो, रति करो। रति किसको कहते हैं? रति कहते हैं सबसे पहले श्रद्धा, इसके बाद में निष्ठा, इसके बाद में रुचि, आसक्ति, इसके बाद में होगा ये आसक्ति जो है, इसके बाद में रिफाइंड होने पर यही भाव या रति कहलाती है। इस जगत में साधन में बस इतना ही है, इसके ऊपर में नहीं, प्रेम नहीं, ये प्रेम का पहला भाव, ये रति अपूर्व रति, इधर उधर की नहीं, एकांतिक रूप में रति करो। किन के प्रति? गुरु, गुरु के प्रति। यहां पर एक वचन नहीं कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया कि गुरु करने से कहने से केवल दीक्षा गुरु को ही मत समझो। जो शिक्षा देने वाले हैं कभी कभी दीक्षा गुरु से भी ऊपर उठ जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को, गोपियों को, रूप सनातन को शिक्षा गुरु मानते, और जिन्होंने हमको मंत्र की दीक्षा दी उसको कहते हैं दीक्षा गुरु। अब आप ही लोग बतलाओ जी, हमारे दीक्षा जो देने वाले गुरु हैं वो श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण और महाप्रभु जी श्रेष्ठ हैं या गोपियां श्रेष्ठ हैं? तो दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु हुआ नहीं, किंतु जो साधारण रूप में जो शिक्षा देने वाले हैं, और यदि हमारे गुरु से भक्ति में श्रेष्ठ नहीं है तो अपने गुरु को ही मानो, शिक्षा गुरु भी मानो, क्योंकि वो शिक्षा भी देने वाले हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किंतु शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु से कम मत समझो यदि वैसे योग्य हैं। जैसे हमारे गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हैं, और किसी के गुरु हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिसको आप लोग कहते हैं। हम शिक्षा गुरु स्वामी जी को मान लेते हैं। अब स्वामी जी के जो शिष्य हैं ये कहें ये हमारे ये गुरु हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, ये हमारे दीक्षा गुरु हैं, और केशव महाराज जी हैं वो क्या हैं?
शिक्षा गुरु।
तो हमारे शिक्षा गुरु उनसे कम हैं ऐसा मत समझो, क्योंकि उनको भी उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी है, संन्यास दिया, वो भी उनको गुरु के रूप में मान रहे हैं। इसलिए शिक्षा और दीक्षा गुरु में भगवान के प्रति जिनकी अगाध और अधिक भक्ति है उसी को सम्मान दो, साधारण रूप में दोनों को बराबर समझो। इसलिए गुरु के प्रति तुम निष्ठा रखो, रुचि रखो, प्रेम रखो, रति रखो। जो हृदय में प्रेरणा देते हैं वो भगवान ही शिक्षा गुरु हैं। जैसे भिन्न मंगल के शिक्षा गुरु कौन है? सिखी पुच्छ मौली। गुरु के चरण में प्रीति रखो। दूसरी बात, गुरु गोष्ठ है। गोष्ठ, गोष्ठ किसको कहते हैं? जहां पर गोप, गोपी, गलियां, गो बछड़े और गोपाल जहां पर सर्वत्र एकत्र रहते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, उसको कहते हैं गोष्ठ। जैसे नंद गोष्ठ, नंद बाबा का नंद गांव एक गोष्ठ है, गोकुल एक गोष्ठ है। इसमें जो रहने वाले हैं कौन? नंद बाबा, यशोदा जी, गोपियां हैं, श्रीदाम सुबल, मधुमंगल इत्यादि है भाई। इनके प्रति अपूर्व रति रखो, सबके प्रति, केवल कृष्ण पर ही और राधा जी पर नहीं, ऐसा नहीं तो बिगड़ जाएगा सबके। अपूर्व गोष्ठाल इष्ट। और वर्तमान काल में या पीछे से जो राधा कृष्ण की एकांतिक निष्ठा के साथ में भजन करने वाले रूप सनातन जैसे गोस्वामी लोग हैं, इनको भी गोष्ठ आले यीशु, क्योंकि वहीं पर रह करके भजन करते हैं। इनमें रूप हैं रघुनाथ गोस्वामी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पीछे से और सब लोग हैं। इन सबको बड़े प्रेम के साथ में आदर करो यदि भजन करना चाहता है। सुजने, सुजनों को आदर कौन? वृंदावन में रह करके राम की उपासना करते हैं, वृंदावन में रह करके नृसिंह देव की उपासना करते हैं, या भगवान के और अवतारों का भी भजन करते हैं। इनको सुजन, इनको भी आदर करो। यदि आदर नहीं, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये किस लिए कह रहा हूं? केवल अपना गुरु ही केवल सर्वस्व है ऐसा मत समझो। उनके जो कृष्ण के परिकर हैं सबको, जितने वैष्णव हैं सबको सम्मान करो। यहां तक कि दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनको भी उदार पूर्वक उनके चरणों की वंदना करो यदि उनमें कृष्ण की भक्ति है। यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करके राम को भी करते हैं तो हमारे कृष्ण ही तो राम है, तभी तो अपने हुए। इसलिए उनको भूसुरगण ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मणों का आदर रखो। कौन? जिनमें कृष्ण भक्ति है किंतु कभी कभी वो लोग दूसरे गणेश जी की भी देव को मान करके पूजा करते हैं, शंकर जी की भी पूजा कर लेते हैं। गोपेश्वर वृंदावन में है ना, उनको भी जाकर के प्रार्थना करते हैं, उनको भी आदर करो। किंतु आदर का तारतम्य अधिक रहेगा, क्या रहेगा? जो कृष्ण की एकांतिक रूप से भजन करते हैं और उसमें भी राधा जी के और साथ लेकर के कृष्ण के करते हैं और उनमें भी राधा के पक्ष होकर के तब दोनों की सेवा करते हैं, ये कर्मशः उन्नत भाव है। इसके बाद में गुरु जी ने जो मंत्र दिए हैं, क्या मंत्र दिया? दीक्षा का मंत्र जो दिया है, कृष्ण का मंत्र दिया, क्लिंग कृष्णाय इत्यादि, या क्लिंग कामदेवाय, कामदेव का मंत्र दिया है, या गुरु जी का मंत्र दिया है, या गायत्री का मंत्र दिया है। इन मंत्रों को बड़े प्रेम से करो, ऐसा नहीं जैसे चित्त चंचल रख करके कर रहे हो तो फल नहीं होगा। लाख जन्म में करो कृष्ण का नाम, राधा जी का नाम लाख वर्ष करते करते रपट सपट जाओ, नहीं होगा। कब होगा? एकांतिक चित्त से बड़े प्रेम के साथ में करो। राय रामानंद को चैतन्य महाप्रभु जी ने बतलाया कि रूप लैले नाम प्रेम उपजत। कैसे नाम लेने से भाई प्रेम उपजेगा? प्रेम साधारण रूप में ऐसे चलते फिरते डोलते हुए नाम कर रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं है, राधा जी का चिंतन, ऐसे नहीं होगा। लाख जन्म करो। कैसे होगा? तृणा दपि सुनी तरोरपि सही सुनना अमानिना मान दे, दीनहीन बन जाओ, दूसरों को सम्मान दो जो उसमें गुण है, तो अपने लिए सम्मान की कामना मत करो। इसी के लिए वो लड़ते हैं, मरते झगड़ते हैं, और वृक्ष के अपेक्षा भी सहिष्णु हो जाओ और तृण की अपेक्षा दीन हो। तृण को दबा देने से फिर ऊपर उठ जाता है, हम उससे भी दीन हैं, तब तक भक्ति आएगी। वृक्ष को काटने से नहीं कहता, वैष्णव लोग भी ऐसे ही होते हैं, ये सब गुण होने चाहिए। सबको जथा योग्य सम्मान दो क्योंकि कृष्ण उसके अंदर में है, इसलिए अपने मंत्र को पक्के विश्वास के साथ में करो, चित्त को समाहित करके एकाग्र करके मंत्र, तब तो उसका फल होगा। तो ये मंत्र हुए, सवेरे स्नान किया, स्नान करके चित्त को एकाग्र कर लिया, पूरब की तरफ में बैठ गए और एकाग्र चित्त से अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे और ध्यान करते हुए उस मंत्र को करो। और महामंत्र जो दिया नाम भगवान, वो मंत्र से भी बढ़ करके है। ये जितने हमारे गुरुजी ने मंत्र दिए हैं हम लोगों के, गायत्री मंत्र से लेकर के अभी तक जितने हैं काम गायत्री तक, इन सब में श्रेष्ठ क्या मंत्र है? महामंत्र। वो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उन सब में श्रेष्ठ है। इसको भी बड़े प्रेम के साथ में करो, चलते फिरते करने से प्रेम नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी अजामिल जैसी, किंतु भैया प्रेम नहीं होगा। उसमें भी ब्रज का प्रेम, वैकुंठ का प्रेम भी सहज है, इन लाखों कोटि वैकुंठ के भक्तों में से कोई एक बिरले कृष्ण का भक्त, इसलिए ब्रज का प्रेम नहीं होगा, इसलिए ब्रज का प्रेम। और राधा कृष्ण जुगल के प्रति हे मन तुम अनुराग रखो, इसलिए सबके प्रति द्वेष भाव छोड़ करके परम प्रेम के साथ राधा कृष्ण का इस प्रकार से महाप्रभु जी के और रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के भजन करने से तब ब्रज का प्रेम होगा। राधा जी का वाला जो प्रेम है उसका थोड़ा सा अंश मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे गोस्वामी ने कहा आराध्यो भगवान ब्रजेश, वृंदावन के जो नंदनंदन है श्याम सुंदर है इनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है, समस्त वेद उपनिषद शास्त्र सब ऐसा, और वृंदावन भी वैसा ही आराध्य है। एक आदमी यहां पर भजन कर रहा है, एक आदमी वृंदावन में रह करके भजन कर रहा है, दोनों का एक नहीं होगा भाई। अभी मन से हम वृंदावन में भजन कर सकते हैं, किंतु वृंदावन में गोवर्धन के नीचे बैठ करके उनकी छत्र छाया में, राधा कुंड के श्याम कुंड में, या बंशी बट के शीतल छैया में हम यदि भजन करते हैं उसका और ही एक अद्भुत, चित्त अपने आप बरबस शांत हो जाएगा, यहाँ पर तरह तरह के झमेले लग सकते हैं। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है, जैसे कृष्ण आराध्य हैं वृंदावन। और आराधनाओं में सबसे आराधना कौन उपासना में है? गोपियों ने जो कृष्ण की आराधना की वो सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है, इसके समान और कोई दूसरा प्रमाण, उन्हीं में ये सब गथाएं और कथाएं लिखी हैं। गोपियां कौन राग सबसे श्रेष्ठ है, यहां तक कि कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु का विचार है। स्पेशल पका हुआ ये आम का फल है, किंतु पेड़ को काटो मत, पेड़ को काटने से फल रहेगा तो सनातन धर्म हमारा पेड़ है, पहले हम सनातनी हैं, इसके बाद हम वैष्णव हैं, इसके बाद में हम गौड़ीय वैष्णव हैं, इसके बाद में कृष्ण के भक्त हैं, इसके बाद में हम राधा जी के अनुगामिनी हैं, ये क्रमशः और बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस चीज को ठीक रखते हुए जिसका जो अधिकार है उसके अनुसार में उनको शिक्षा दी जाएगी। हम ऐसा नहीं कर दें अपने को इस समय इस कौन हम हैं तो गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। और गौड़ीय वैष्णव है तो हम सनातनी नहीं है तो ये और जहन्नम में जाएंगे, इसलिए राधा कृष्ण का जो प्रेम है यही सनातन है, गीता इसी की शिक्षा देती है, वाल्मीकि रामायण इत्यादि तुलसी रामायण सब इसी की शिक्षा देते हैं, इसी तरह से समस्त शास्त्र एक ही चीज की शिक्षा देते हैं, जरा अंतर है रिफाइंड से और रिफाइंड और बस, और कोई अंतर नहीं है। किंतु जो लोग केवल देवताओं की उपासना करते हैं उनको भगवान कुछ फल देते हैं, किंतु भगवान ही फल देने वाले हैं, देवता लोग फल नहीं दे सकते, इस चीज को भी समझना चाहिए। जो कोई भी आप कर्म करते हैं देवता लोग क्या करते हैं, कर्म सचिव, सचिव मैंने क्या, कर्म सचिव मैंने होता है, भगवान कहते हैं कि ये फल देने के लिए हम एक देवता को बना दूंगा।